41 से 48 का टॉपिक है, हज़रत इब्राहिम का वालिद को तबलीग करने का हकीमाना सलूक। आप देख रहे हैं कि अंबिया कराम को इंसानी रिश्तों से आजमाया जा रहा है। पीछे सूरत यूसुफ थी, भाइयों से आजमाए गए। अभी सूरत मरियम पढ़ रहे हैं, हज़रत मरियम की आजमाइश एक बेटे की वजह से हो गई। फिर आप देख रहे हैं कि हज़रत ज़करिया और यहया का तस्करा है, अब इब्राहिम और उनके बाप की बात है। क्या आपको इससे महसूस नहीं हो रहा कि अंबिया कराम कैसे इंसान थे? आज आपको मुझे कभी भी अपनी फैमिली या किसी से कोई भी गम पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, तो उस वक्त इनके गमों और इनके दुखों को याद कीजिए। तो हज़रत इब्राहिम कौन थे कि जिनका बाप बुत परस्त नहीं बल्कि बुत फरोश था? आज अगर उसका नाम आगे आता है, बल्कि इधर भी आप देखेंगे, वज़कुर फिल किताब, और ये जिक्र कीजिए किताब में इब्राहिम का, बेशक वो सच्चे नबी थे। जब उन्होंने कहा अपने बाप से, या अबती, ए अब्बा जान, लिमा ताबुदू, क्यों आप इबादत करते हैं, माला या स्मो, जो नहीं सुनते। यहाँ देखिए, मन नहीं का, मन जानदार होता है और माँ गैर जानदार, यानी बहुत ही छोटी चीज़। क्योंकि अमूमन जो लोग पूछते हैं ना अल्लाह के सिवा, वो जानदार हस्तियों को नहीं बल्कि बेजान हस्तियों को भी पूछने लग जाते हैं। तो यही बात इधर है, क्यों आप उनकी इबादत कर रहे हैं जो सुनते भी नहीं, जो देख भी नहीं सकते और आपसे किसी चीज़ को हटा नहीं सकते? ए अब्बा जान, बेशक आ गया मेरे पास इल्म जो आपके पास नहीं आया। आज ही देखिए, बस आप मेरी पैरवी कीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखा दूंगा। ए अब्बा जान, ना इबादत कीजिए शैतान की, क्योंकि शैतान तो रहमान का बड़ा नाफरमान है। और ए मेरे प्यारे अब्बा जान, मैं तो डरता हूँ इस बात से कि आपको कोई अजाब पहुँच जाए रहमान से, और फिर शैतान आपका दोस्त बन जाए। क्या पता चला कि नेक औलाद अपने माँ बाप की फिक्र करती है, यानी इतनी मोहब्बत का अंदाज़ है। आप एक एक जुमला देख रहे हैं, या बती, एक होता है या भी और एक या बती। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी को कहते अब्बा और आप किसी को कहते हैं अब्बू जी, अब्बा जान, प्यार का अंदाज है। इससे पता चलता है कि अगर औलाद को, जैसे अगर आपको कुरान पढ़कर कुछ ऐसी बातें समझ आ गई हैं जो आपकी अम्मी को, सास को नहीं पता, और हो सकता है वो जहालत की वजह से किसी बिदत का शिकार हो, किसी ऐसी रस्म में हो जो इस्लाम में नहीं है, तो आप प्यार से बात करें, दिल में दर्द हो, जुबान नरम हो। तो चाहे आप अपने ससुराल को तबलीग कर दें, वो बुरा नहीं मनाएंगे। हमारा हाल क्या कि हम दिल में ग्राज और गुस्से और फिर उसके बारे में बुरा सोच के बात करते हैं, और टोन बड़ी सख्त होती है, टाउंटिंग स्टाइल होता है, नहीं होगा। चाहे आपके बिगड़े हुए जवान बच्चे हैं या आपके भाई हैं या बहन है, जिसको भी तबलीग करे पहले दुआ मांगे, नफिल पढ़ें कि अल्लाह मेरी बात में तासीर डाल दे, फिर उसकी मोहब्बत महसूस करके फिर कह दीजिए। और फिर अगर कोई नाराज़ होगा तो कोई बात नहीं, आपको बेहतरीन तरीके से बात करने का फ़ायदा होगा। अच्छा, हज़रत इब्राहिम तो इतनी मोहब्बत से बात कर रहे हैं, और अब्बा जी जो कि अभी कुफर पे हैं और जिनका दिल सख्त हो चुका है, याद रखिए जिसको पूजेंगे वैसे हो जाएंगे। पत्थरों को पूजने वाले पत्थर दिल भी हो सकते हैं। गुस्से में अपने बेटे को क्या कहते हैं, आयत 46 में देख लीजिए, काला अरागिबुन अंता अन आलिहती, कहने गए इब्राहिम, क्या तू बेरगबती करता है मेरे इलाहों से? अगर तू बास ना आया तो मैं तो तुझे ज़रूर पत्थर मारूंगा, और मुझसे दूर हो जा। वह चूरनी मुलिया का मतलब होता है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गुस्सा आ गया बाप को, बेटा देखिए, काला सलामुन अलैक, आप पे सलामती हो, मैं अन करीब आपके लिए बख्शिश मांगूंगा अपने रब से, क्योंकि इन्नहु काना बी खफिया, मेरे उसके साथ बड़े प्यारे ताल्लुकात है, यानी अल्लाह मुझसे बड़ा मेहरबान है, और मैं आपको भी छोड़ता हूँ और जिनको आप अल्लाह के सिवा पूछते हैं उनको भी, और मैं अपने रब को पुकारता हूँ, और असअल्ला अकूना बिदुआई रब्बी शकिया, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब से मांगकर बदबख्त नहीं रहूँगा। क्या पता चला कि अंबिया कराम का अकीदा बड़ा प्यारा था, अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक बड़ा हसीन था। तो आपके मेरे लिए इसमें तबलीग के बहुत नुक्ते हैं, किस तरीके से अल्लाह ने अंबिया कराम को अपनी कौमों के लिए खैर का जरिया बना दिया। फिर उसके बाद आगे आयत 49 से 50 में इब्राहिम, इसहाक़ और याकूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की इनायात है, यानी अम्बिया का सिलसिला आगे बढ़ता है कि जब इब्राहिम अपने बाप की इन सारी गुस्से वाली बातों के बावजूद उनसे अलग हो गए, और जिनकी वो पूजा करते थे, वहबना लहु इसहाक़ व याकूब, फिर हमने उनको अता कर दी इसहाक़ भी और याकूब भी, और सबको नबी बना दिया, और हमने उनको अपनी रहमतों में रखा, और वजअलना लहुम लिसान सिदक़िन अलिया, हमने उनका जिक्र खैर भी रखा। देखिए पिछली आयतों से इसको जोड़िए, हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के नाम पे अपने बाप को तबलीग भी की, लेकिन वो नहीं माना तो छोड़ दिया। इसको कहते हैं अलविला वल बरा, अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मनी। अब हम कहते हैं ऐसे लोग अकेले रह जाएंगे। अल्लाह कहते हैं जब फलम्मा, जब उन्होंने उन सब को छोड़ा तो हमने उनको बेटों और पोतों और उनके बच्चों की खुशखबरियाँ दे दी, तो पता क्या चला कि अल्लाह किसी का हक नहीं रखता। फिर इससे आगे आयत 51 से ऑनवर्ड 53 तक हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की इनायात का तذکرہ है। वस्कुर फिल किताबी मूसा, कि मूसा अलैहिस्सलाम का तذکرہ कीजिए किताब में, वो मुखलिस भी थे और रसूल और नबी थे, और हमने उनको तूर की दाई जानी बुला लिया और उनको करीब कर लिया बातें करते हुए, और हमने उनको अता किया अपनी रहमत से भाई हारून नबी बनाकर। तो क्या पता चला कि अम्बिया कराम का तस्करा बड़ी मोहब्बत से अल्लाह सुब्हान तआला इनायात में फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद आयत 54 से 55 में हज़रत इस्माईल की तहसीन है, और आप नोट कीजिएगा इसमें हमारे अमल की भी बात है। हज़रत इस्माईल का क्या तारुफ है? वस्कुर फिल किताब इस्माईल, और ज़िक्र कीजिए इस्माईल का, इन्नहु काना सादिकल वाद, वो वादों के सच्चे थे, वकाना रसूलन नबिया, वो रसूल और नबी भी थे, और वकाना यामुरु अहलहु बिस्सला, वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते ही रहते थे, और साथ ही साथ क्या करते थे? देखिएगा ये जो लफ्ज़ है ना, वकाना, इंग्लिश में और उर्दू में आपने पढ़ा होगा एक लफ्ज़ माजी इस्तमरारी, पास्ट कंटिन्यूस, उसमें क्या होता है? ING लगता है। ये जो लफ्ज़ कान है ना, ये बता क्या है? एक दफ़ा नहीं नमाज का हुक्म किया, यानी काना का लफ्ज़ बता रहा है मुस्तकिल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते थे, और ज़कात का भी, और अपने रब के बड़े प्यारे थे। यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी, पहले तो माँ बाप को सादिकुल वाद बनना पड़ेगा। अल्लाह के नबी पहले सादिक और अमीन कहलाए, फिर अल्लाह ने अपना पैगाम उनकी ज़ुबान पे जारी किया। हमें भी सबसे पहले तो अपने किरदार के बारे में अच्छी गवाहियाँ लेनी पड़ेंगी लोगों से, झूठे बंदे से लोग सच्चा कलाम भी नहीं लेते। दूसरी बात है नमाज। आप देखिए कि एक नबी की इस खूबी को पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला, तो क्या आप और मैं भी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते हैं, ज़कात की तलकीन करते हैं? आप कहेंगे जी बहुत कहते हैं, पर ये सुनते ही नहीं है। सवाल ये कि कैसे कहते हैं आप? पहली दफ़ा प्यार से, दूसरी दफ़ा ज़रा और खड़े होके, तीसरी दफ़ा ज़रा झुंझलाहट, और चौथी दफ़ा सलवाते? ऐसा ना कीजिए। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं, ख़ासतौर पे 8, 9, 10 साल की उम्र में जब बच्चों को नमाज की दावत देते हैं, और वो हदीस सभी सुनाते हैं जी 7 साल में ये, 8 में ये, और 10 साल में तो मारो। पहली बात है, जिस बच्चे ने 10 साल की उम्र तक अपने माँ बाप को नमाज का पाबंद देखा होगा, और अब्बा की उंगली पकड़ कर वो मस्जिद गए होंगे, और बच्चियाँ अम्मी के साथ ही सर पे स्काफ लेके जाए नमाज पे खड़ी होंगी ना, उन बच्चों को कहना ही नहीं पड़ेगा। ये अचानक एकदम गियर बदलने वाली कहानी नहीं है कि आप एकदम 7 साल की 7th बर्थडे पे बच्चे को कह के आज के बाद नमाज पढ़ा करो, और 10वीं पे आप उसको थप्पड़ मारेंगे, नहीं पढ़ोगे तो मारूंगा। ये गलत तरीका है। करें क्या? प्यार से, एक बार, दो बार, तीन बार। और मैं इसकी एक मिसाल अक्सर देती हूँ कि अगर आप एक जुमला बोलते हैं, बेटा उठिए नमाज पढ़ें, आप इसको रिकॉर्ड करें, फिर इसको रिपीट रिपीट पे लगाइए, तो 10 दफ़ा भी सुनेंगे तो एक ही टोन पे बात होगी ना। या पहली दफ़ा वो आराम से बोलेगी, दूसरी दफ़ा ज़रा गुस्से से, और तीसरी दफ़ा तो थप्पड़ भी मार देगी। कीप डूइंग, कीप डूइंग। प्यार से आप उनके पाँव दबाने शुरू कर दें, बालों में उंगलियां डालिए, AC है तो बंद कर दीजिए, हीट है तो बंद कर दें, कमरे की लाइट खोल दें, सुबह की दुआएं लगा दें, यानी माहौल ऐसा बनाइए कि फजर के लिए ख़ास तौर पे मुश्किल लगता है, इसलिए बता रही हूँ, हर नमाज पे, और इससे पहले उनको अल्लाह ताला का तारुफ ऐसा खूबसूरत दे दे कि उनका अपना दिल करे नमाज पढ़ने को। आप देखिए कि दोस्तों के तस्करे होते हैं ना, उसको मिलने को जाते हैं ना, जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आपको नहीं कहना पड़ेगा। और इस पर भी बहुत कुछ रिकॉर्डेड है, ख़ास तौर पे इस मौजू पे पूरे लेक्चर्स भी मौजूद हैं कि हम अपने बच्चों को और अपने शोहरों को और घर वालों को नमाज पे कैसे डालें। असल बात है कि अब हमारे पास वक्त हो, हम सिर्फ़ एक मुख्तसर सा तारुफ कुरान का सुनकर मुतमईन ना हो, बल्कि अब इससे हम मज़ीद सर्च करें, उठते बैठते, गाड़ियों में ड्राइविंग करते हुए, घर में काम करते हुए, कोई ना कोई एक मौजू सुने। इसमें पेरेंटिंग A to Z बहुत फेमस सीरीज़ है कि जिसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ों में ये मौजू भी आता है कि हम अपने बच्चों को नमाज कैसे सिखाएं। फिर उसके बाद आगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का एक ख़ास मुकाम था, 56-57 में उसका तस्करा है। वस्कुर फिल किताबी इदरीस, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिया, मतलब पिछले नबी की तरह ये भी सच्चे थे और सिद्दीक भी थे। फरफ़ानाहु मकाना नलिया, हमने उनको बहुत ऊंचे मुकाम पे पेश किया। एक तो आम मुकाम है ना, जैसे आप इस्तियारतन कहते हैं जी फलां का मुकाम ऊंचा है, जिसकी आपके दिल में इज्जत होती है आप उसके लिए कहते हैं। लेकिन हज़रत इदरीस के बारे में रिवायात में आता है कि इन्होंने ख्वाहिश की थी कि मेरी रूह ज़मीन पर नहीं आसमान पर निकाली जाए, और फिर इनको फरिश्ता ऊपर ले गया और वहाँ इनकी फिर जान निकाली। असल में तो अल्लाह ने इन अम्बिया कराम को हमारे लिए निशानियाँ बना दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। असल बात यह है कि अल्लाह की कुदरत पे यकीन रख ले इंसान। हज़रत ईसा आज भी जिंदा है, आसमान पे है। हज़रत इदरीस को वहाँ फौत कर दिया गया, तो आपके मेरे अमल में बस यही बात है कि हम इन बातों को मानते जाएं। और आगे आप देखिए आयत 58 में अम्बिया कराम के इनाम याफ्ता होने का तज़किरा है। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं जिन पर हमने इनाम किए, ये नबियों में थे, फिर उनकी औलादें, यानी देवर चोजन पीपल, चुने हुए लोगों में ऐसे थे। अब देखिए ये अपने दौर में तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं भी हुए होंगे, लेकिन अब क़यामत तक अल्लाह ताला इनका तज़किरा फरमा रहे हैं। इसी तरह याद रखिए कि अच्छी बात करने वाला, अच्छा काम करने वाला, अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा शोहरत ना भी पाए और उससे लोग फ़ायदा ना भी लें, लेकिन उसके बाद उससे फ़ायदा लोग लेते हैं। और ये आयतें सजदा भी है इसमें, अगर आप देखते हैं आगे 59 में, नालायक जानशीनों का तर्ज़ अमल। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, अफसोस की बात है, अम्बिया की बातें हम पढ़ रहे हैं, चुने हुए लोग थे, लेकिन जूं ही दौर आगे जाता गया, अम्बिया कराम दुनिया से जाते रहे, फिर उनकी औलादों की औलादों की औलादें शुरू हुई। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस्सलाम, फिर उनके ना खल्फ किस्म की नस्लें पैदा हो गईं। और उनका जुर्म क्या था? वो नमाज़ों को ज़ाया करते थे, वत्तबउ शहवात, और ख्वाहिशात के पीछे पढ़ते थे। फसौफ़ यलक़ौना गैया, अन करीब गई में डाले जाएंगे। अल्लाह ताला आपको और मेरी औलादों को, नस्लों को हिदायत पे रखे। यह आयत बहुत सेंटिमेंटल है, दिल बोझल हो जाता है। ऐसा ना क्या जहाँ पर मैं नेकियों के काम करते रहें, नेकियों की दावत देते रहें, और हमारी नस्लें महरूम रह जाएं, वो दुनिया की पढ़ाइयों के सिलसिले में इधर उधर खो जाएं, और उसके बाद उनके अंदर यो एक तो होता है ना हलफ और एक खल्फ, यानी इसमें ना खल्फ औलाद की बात है। दो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं, नमाज का ज़ाया होना और ख्वाहिशों के पीछे पड़ना। ज़रा दिल पे हाथ रख कर सोचिए, आज ऐसा हो नहीं गया कि आज की नस्ल को नमाज़ों की उतनी फिक्र है जितनी होनी चाहिए, और उसकी बहुत बड़ी वजह शहवत, और अब तो हाथों में वो गैजेट है। सारी रात का फ़ोन खोल के बैठ जाएंगे आप, दो नफिल नसीब नहीं होते। अल्लाह मेरे समेत आप सबको तौफीक दे। किसी ने कहा कि हम सुनते थे साहबा इतना कुरान पढ़ते हैं, इतना कुरान पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, हमें यकीन नहीं आता था, अब आ गया। जब एक फ़ोन पकड़ कर बैठ कर सारी रात उसमें इधर उधर घूम फिर सकता है, इधर देख वो देख, तो साहबा को अब कुरान से मज़ा आता था, वो क्यों नहीं करते होंगे। तो आइए ज़रा सा अपनी नमाज़ों का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि अपनी नमाज़ों का जायज़ा लेते रहना चाहिए। ये जो अदाउ सलात है ना, तो नमाज कैसे ज़ाया होती है, सवाल लिख लीजिए। तो पहली बात है कि नमाज पढ़ने में बिला वजह ताखीर भी नमाज को ज़ाया कर देती है। आप पानी मांगें और आपकी बहू या बेटी फौरन ना लाए, एक घंटे बाद लाए, अच्छा लगेगा? सारा दिन दो तीन बार पानी मांगे, बेटा पानी देना पानी देना, और रात सोने से पहले खूबसूरत सा ट्रे ले, एक गिलास में पानी, एक में दूध, एक में शरबत, एक में जूस डाल कर ले आए, ये अम्मी पहला सुबह वाला, ये दोपहर वाला, ये शाम वाला, आप खुश होंगे। ये मिसाल है उन लोगों की जो कहते हैं हम सारी नमाज़ें इकट्ठी करके पढ़ते हैं। देखिए अल्लाह को आपसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह के फजर, हैया अलस्सलाह हैया अलफलाह कहकर दिन में हर नमाज में एक पैगाम दिया कि तुम्हारी अपनी कामयाबी नमाज़ों में है। हम सारा दिन कामयाबी के पीछे ही भागते हैं, कभी बच्चों के पढ़ने पढ़ाने की सूरत में, और कभी मर्दों के कमाने की सूरत में, और कभी अपने घर के काम करने की सूरत में, लेकिन कामयाबी किधर है? नमाज में है। आप देखिए कि सहाबा कराम का नमाजों को ज़ाया होते देखकर रोना, आप ज़रा किताबों में पढ़िए, एक नमाज चली जाती थी ना तो इतना रोते थे कि बाज़ रिवायत में आता है कि शैतान उनके पास आकर कहता था कि रो नहीं, नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि अल्लाह को तुम्हारे इस रोने पे इतना प्यार आ रहा है कि मुझे डर है कि नमाज से ज़्यादा जरीना दे दे। अब ये बातें अगर सही हैं तो आप देखिए क्या हमें इतनी तड़प है। फिर इसके बाद देखिए कि नमाज से गाफिल होने की सज़ा कब्र में भी है, हशर और आगे के मराहल तो दूर है। करें क्या? अपनी नमाजों की वक्तन फवक्तन देखभाल करें, नमाज में अपनी हालत की जांच पड़ताल करें, क्योंकि नमाज को ज़ाया करना पूरे दीन को ज़ाया करना है। और नमाज़ों को बेहतर किया करें। देखिए अपग्रेड करते हैं ना लोग, अपग्रेड कीजिए। ये नहीं कि हर वक्त कुल वल्ला ही पढ़ रहे हैं, हर वक्त सूरत आती नकल कौसर पढ़ रहे हैं, अपनी नमाज की दुआओं में नई दुआएं याद करते रहा करें। यानी नमाज को प्यार से और मोहब्बत से पढ़ें। इसीलिए फिर आगे आयत 40 से 63 में परहेजगारों का हसीन इंजाम है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा। यानी ऐसे ही लगता है कि अल्लाह दिलों को पढ़ लेता है। तुम डर गए हो, तुम घबरा गए हो, तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, तौबा कर कर ईमान ले आओ और अमल सवाले करो। ऐसे ही लोगों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा और बिल्कुल भी जुल्म नहीं होगा। और वो जन्नत है जिसका वादा किया है रहमान ने अपने बंदों से बिन देखे, और उसका वादा तो पूरा होने वाला है। क्या होगी वो जन्नत? ला यस्मौन फीहा लगवा, कोई लगवियात नहीं होंगी उसमें, हाँ मगर सलामन सलामन। कैसे? दुनिया में आप ना भी किसी से उलझें, लोग आपसे उलझेंगे। आप अच्छे खासे खड़े हैं और कोई आके आपकी गाड़ी को हिट कर जाता है, जन्नत में ऐसा नहीं होगा। सलामती सलामती। आज भी वो घर कितना खूबसूरत है जहाँ सब घर वाले प्यार से मोहब्बत से अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, इतनी मोहब्बत से रहते हैं। और आगे देखिए, वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुकरतुम वाशिया, उसमें उनका रिज़्क़ होगा सुबह शाम। क्या दलील ली लोगों ने इसे कि जन्नत में दो वक्त खाना आएगा? हम देसी लोग तो परेशान हो जाएंगे, हमें तो 3 वक्त के खाने के इन बिटवीन 20 स्नैक्स चाहिए होते हैं। लेकिन बहरहाल एक फितरत की पुकार थी। अल्लाह कहते हैं तिल कल जन्नत उल्लती नूरी सो, ये है वो जन्नत जिसके हम वारिस बनाते हैं किनको, मिन इबादिना, अपने बंदों में से, मन काना तकिया, जो मुत्तकी होता है। अल्लाह आपको मुझे अपनी नस्लों अपनी औलादों के समेत जन्नत में ले जाए, हमारे भाई बहनों और हमारे माँ बाप के समेत जन्नत में ले जाए। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान पाक से मोहब्बत का तذکرہ है आयत 64-65 में, और अल्लाह ताला इसमें ये बता देते हैं कि ये जो कुरान आप पर नाजिल किया जा रहा है, ये अल्लाह के हुक्म से किया जा रहा है। असल में कुछ बातें थी जो आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे मांगते थे, मुतालबे करते थे, अल्लाह कहते इनको छोड़ दो। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बि अम्री रब्बिक, जो वही आती है, जिब्राइल आते थे वो अल्लाह के हुक्म से आते थे, और आप इस किताब को पढ़ते भी रहें और दूसरों को बताते भी रहें। फिर आयत 66 से 70 में मरने के बाद इंसान का दोबारा ज़िंदा किया जाना, लाइफ आफ्टर डेथ। मक्का वाले बिल्कुल इससे दूर हो चुके थे। तो इन आयात का नंबर आप नोट कर लीजिए। कोई आपसे पूछ सकता है कहाँ लिखा है कि मरने के बाद ज़िंदा किया जाएगा, तो आप कहेंगे आयत 66 से 70 के इन बिटवीन लिखा है कि इंसान मरने के बाद ज़िंदा किए जाएंगे। और एक बड़ी खूबसूरत बात आयत 71 से 72 में पुल सरात की बात, हर एक को पुल सरात से गुजरना है। वाइम मिन को मिल्ला वारी दुहा, और कोई ऐसा नहीं है कि जिसको इसके ऊपर से ना गुजरना पड़े, और ये आपके रब का हतमी फैसला है। लेकिन फिर हम निजात दे देंगे उनको जो तकवा इख्तियार करते हैं, और छोड़ देंगे जालिमों को इसमें ऊंधे गिरे हुए। तो